ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित है शांतिवन के प्रभा मिश्रा बहन जी। आपको 1993 में ज्ञान प्राप्त हुआ और 1997 में समर्पण हुए। आप मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए लिटरेचर किया है। आप रेडियो, रंगमंच, टीवी सीरियल्स एवं फिल्मों में भी कलाकार के रूप में कई भूमिका निभा चुकी है। मुंबई दूरदर्शन के लिए सीरियल्स का भी डायरेक्शन किया है। जीवन में नाम मान शान होते हुए भी ज्ञान प्राप्त होते ही आपने उन सबको अलविदा कर अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पण किया। पिछले 8 साल से आप ब्रह्म कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स शांतिवन में कल्चरल एंड मीडिया विंग की विशेष सेवाएं कर रही है। आप एक कुशल राजयोगा प्रशिक्षिका है एवं स्व प्रबंधन, मूल्यनिष्ठ जीवन तथा अनेक कोर्सेस की प्रशिक्षिका है। भारत में अनेकानेक स्थानों पर आध्यात्मिक मेलाओं, मेगा प्रोग्राम्स को भी संचालन करने का आपको विशेष अनुभव प्राप्त है। राजयोग शिविर तथा योग भट्टी कराने हेतु विशेष निमंत्रण से भारत के अनेक राज्यों में भी आपका जाना हुआ। आप ओम शांति चैनल की डायरेक्टर है। आपके नेतृत्व में टीवी चैनल संस्कार, साधना, ई टीवी, जागरण इत्यादि चैनल्स पर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तथा अनेकानेक आत्माओं को अपनी सेवाओं द्वारा लाभान्वित करती रहती है। आज हमारे सम्मुख है अब घर चलना है, इस विषय पर ज्ञान बातें सुनाएंगे। आइए अब हम सुनेंगे प्रभा बहन जी से। एक हाथ हिला के सभी इनके स्वागत करें। ओम
ओम शांति। सभी ने टॉपिक सुना, अब घर जाना है। सभी ने तैयारी कर ली घर जाने की। तो अब हम सबको घर जाने की तैयारी करनी है। कौन से घर? लौकिक। आसाम जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे या तमिलनाडु जाएंगे, जहां से आए वहां जाना है या कोई और जगह की तैयारी करनी? इशारा कर रहे हैं। सबने कर ली तैयारी, रेडी है? क्योंकि बाबा तो बार बार इशारा दे रहा है कि अब घर जाना है। तो घर जाना है तो घर कैसे जा सकेंगे ये पता है? घर कौन जा सकेगा और कैसे जा सकेगा ये पता है, क्योंकि बाबा ने तो अपनी तरफ से हमें कई इशारे दे दिए। प्रकृति भी दे रही है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं दुनिया में वो भी हमें संकेत दे रही हैं, और बाबा तो बता चुका है। तो अब हम सबको घर जाना है, अपने घर परमधाम। ये घर की तो तैयारी की ही होगी और सबके पास टिकट होगी भी। हो सकता है यहाँ जाने की टिकट अभी ना हो आपके पास, लेकिन अपने घर जाने की टिकट तो सबके पास है ना। जब हम ऊपर से आए तभी रिटर्न टिकट साथ में लेकर आए थे। कोई है जिसके पास रिटर्न टिकट ना हो वह हाथ ऊपर करे? कोई है? रिटर्न टिकट नहीं है? ऊपर से आए उसी समय बाबा ने रिटर्न टिकट दे दी थी। सिर्फ ये है कि उस टिकट पे टाइम और डेट नहीं डला हुआ है। टिकट सबके पास है। वो टिकट आप ट्रेन की, प्लेन की करते हैं तो उसपे टाइम और डेट डला होता है। हम सबके पास रिटर्न टिकट है, सिर्फ टाइम और डेट नहीं डली है। लेकिन जाना सबको है और बहुत जल्दी जाना है। तो अब हमें घर जाने की तैयारी कर लेनी होगी। नहीं भी हैं तैयार तो अब तैयार हो जाइए रिटर्न जर्नी के लिए। रिटर्न जर्नी का मतलब क्या होता है? रिटर्न शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक, किसी से कुछ लिया का मैंने उससे लिया था ये रिटर्न कर दिया। एक होता है पेज को टर्न करना, पेज पलट दिया, जीवन पलट दिया। एक होता है रिटर्न, अब वापस जाना है। ये तीनों चीज को रिटर्न कर दिया होगा तो घर जाने की तैयारी पक्की है। तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछे कि जिससे जो लिया था वो रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। सबसे पहले तो बाबा ने हमें जो ज्ञान गुण शक्ति प्रेम दिया उस बाबा के प्यार का रिटर्न दे दिया। वैसे भगवान के प्यार का रिटर्न तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन बाबा के प्यार का रिटर्न क्या है? बाबा के समान बन जाना। बाबा हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो एक ही बात चाहता है कि हम बाबा के प्यार का रिटर्न उसके जैसे बन जाए, यानी बाबा के प्यार का रिटर्न है। बाबा के जैसे बनने का मतलब क्या? बाबा जैसे सारी विश्व की आत्माओं के प्रति दया करुणा का भाव रखता है कि मेरे हर बच्चे दुख से छुटकारा पाले, सुख उनको मिले, क्या यही भावना हर पल हमारे मन में रहती है हर आत्माओं के प्रति? कि किस तरह हम अपने भाई बहनों को वो बाबा का प्यार, वो ज्ञान, वो गुण, वो शक्ति जो मुझे मिली है वो मैं औरों को दिलाऊं? अगर ये आपकी भावना रहती है, यानी आप बाबा के प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। बाबा के प्यार का रिटर्न, दुनिया में तो कुछ करते हैं तो मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, बाबा कुछ नहीं। सिर्फ बाबा एक ही बात चाहते हैं कि हम बाबा की जैसी इच्छा, बाबा की जैसी भावना, वैसे हम बच्चे बन जाएं। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या अभी तक हम अपना ही भला करने में लगे हैं कि अब हम विश्व को भी देना शुरू किया है? अगर हम विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? योग जब करते हैं तो शांति का दान, शक्ति का दान, क्योंकि उन आत्माओं के पास जब तक शांति नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो वो ज्ञान को पहचानेगी कैसे, ज्ञान को समझेगी कैसे? किसी का मन अशांत हो, उसको ज्ञान सुनाओ, वो कहेंगे मुझे ज्ञान नहीं सुनाओ, अपना ज्ञान अपने ही पास रखो, मुझे बहुत टेंशन है। अब वो आत्माएं ज्ञान कब सुनेगी? जब उनके जीवन में शांति होगी। तो सबसे पहले हम जब योग करते हैं तो योग के दौरान जो शांति की अनुभूति हमें हो रही है, वही शांति के प्रकंपन औरों को फैला रहे हैं। शक्ति आज इंसान के पास नहीं है, 2.5 इंच की जुबान है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन फिसल पड़ती तो कईयों की हड्डी तुड़वा देती। अब शब्द बोल दो, सहन नहीं होते, दुनिया में क्या क्या होता। यानी आज हमारे पास शक्तियों का अभाव है तो दुनिया के पास कितनी शक्तियों का अभाव होगा? हम ये तो डायरेक्ट परमात्मा पढ़ा रहे। तो योग के दौरान क्या हम आत्माओं को वो शक्तियों का सहयोग दे रहे हैं? वो आत्माएं थोड़े से स्नेह के लिए तड़फ रही हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुख का कारण है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता। हर आत्मा के दिल में यही है। तो उन आत्माओं को परमात्मा से जो स्नेह हमें आत्मिकता का मिल रहा है, वो परमात्मा का प्यार की वाइब्रेशन हम आत्माओं को फैला रहे हैं। बाबा जो प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे और भाई बहन भी तो तड़फ रहे हैं, बाबा उन्हें भी दे दो ना, प्लीज दे दो ना। हमारा बाबा है ना, हमारा पिता है ना, बच्चे माता पिता से जिद करते हैं ना, मम्मा प्लीज दो ना, पापा प्लीज दो ना, दो ना। माँ दे देती, पिता दे देते। हम भी अपने बाबा से इसी तरह प्यार से बात करें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझे तो ये सब अनुभूति हो रही है, लेकिन मेरे कितने भाई बहन हैं, वो तड़फ रहे, उनको भी दो ना, प्लीज दो ना। और जब इतने प्यार से बोलेंगे तो बाबा नहीं देगा। तो हम अपने आप से पूछें, बाबा के प्यार का रिटर्न और आत्माओं को जो हमें प्रेम, जो हमें शांति, जो हमें शक्ति मिली, वो हम और आत्माओं को दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं, ये बाबा के प्यार का रिटर्न किया है, तो ही आपकी वो रिटर्न जर्नी कंफर्म होगी, यानी आप घर जाने को तैयार हैं। घर हम आए थे जब अपने घर से, परमधाम से, तो कैसे आए थे? और जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ये व्हाइट स्पेडशीट बिछी है, यहाँ पे आप कीचड़ पैर में लगी होगी तो यहाँ आएंगे, पैर रखेंगे नहीं रखेंगे। मखमल के गलीचे बचे होंगे, उस पे गंदे पैर से जाएंगे नहीं जाएंगे। हम जब आए तो अपने घर से एक पवित्र आत्मा आए थे, ईश्वर की शक्तियों को लेके, पवित्रता को लेकर आए थे। अब घर जाएंगे तो पवित्र आत्मा बन के जाएंगे, तो ही प्रवेश कर सकेंगे। पूछे, मैंने अपनी आत्मा को उतना पावन बना लिया है? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम परमधाम और परमधाम से डायरेक्ट सुखधाम में आ जाएंगे, जिसे स्वर्ग कहते हैं। तो अब यहाँ के बाद तो पुरुषार्थ का समय नहीं है, पुरुषार्थ का समय सिर्फ अभी है। अभी जो कर लिया, अभी जो गुण शक्ति आप में दिख रहे हैं, चाहे रॉयल्टी के हैं या जो भी, वही देख के पता चल जाएगा आप जाकर सतयुग में क्या बनने वाले हैं। तो हम अपने आप से पूछें कि घर जाने के लिए जो जैसे पवित्र आत्मा जाना है, मैंने आत्मा को इतना पावन बना लिया है? और सिर्फ मुझे ही पावन नहीं बनना, लेकिन जिन आत्माओं ने ये ज्ञान ग्रहण नहीं किया है, उन्हें भी तो परमधाम ले जाना है। तो उन्हें कौन ले जाएगा? उन्हें ले जाएगा जब हम बाबा से योग करते हैं और वो परमधाम से नीचे तक योग की वाइब्रेशन फैलती है। वो वाइब्रेशन एक प्रकार से नेट का काम करती है। आप लोगों ने सर्कस देखा होगा, सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पे ऐसे जंप मारते हैं। एक जोकर होता है, वो भी कोशिश करता है, वो गिर जाता है, तो वो गिरता नहीं क्योंकि वो नेट बनी होती है, उसमें गिरता, फिर वो नेट से चढ़ के ऊपर चल जाता है। ऐसे ही हमें योग की पवित्र वाइब्रेशन से परमधाम से नीचे तक नेट बनाना है। वो नेट यानी क्या? वो वाइब्रेशन ऐसी फैलाना है कि जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ नहीं भी किया होगा, तो वो नेट के जरिए परमधाम तक पहुंच जाए। तो बाबा ने क्या कहा? अब अपने पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, अब हमें पुरुषार्थ करना है औरों के लिए। अगर अपने लिए ही अभी तक करते रहेंगे तो फिर हम विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? बाबा ने हमें प्रजा बनाने के लिए तो नहीं चुना, बाबा प्रजा योग तो नहीं सिखा रहा, राजयोग सिखा रहा है। तो राजयोग सिखा रहा है तो हमें राजा बनना है, और राजा बनना है तो राजा बनने के लिए प्रजा भी तो बनानी है, और प्रजा बनाने के लिए उन प्रजाओं को भी तो ऊपर अपने साथ ले जाना है, उन आत्माओं को भी तो सहारा देना है। तो हम अपने आप से पूछे कि योग की वाइब्रेशन से परमधाम से नीचे तक इतनी वाइब्रेशन फैला के हमने वो वाइब्रेशन रूपी नेट तैयार की है, जो अंत में जिन आत्माओं ने ज्ञान नहीं भी सुना होगा तो वो उसके सहारे परमधाम तक पहुंच जाए। तो ये दूसरा अपने आप से पूछे, क्या घर जाने की तैयारी, यानी हमने अपने आप को इतना पावन बना लिया है? क्योंकि परमधाम तो है ही पावन धाम, अब पवित्र आत्मा नहीं जा पाएगी। और पवित्र हम कैसे बनेंगे? जितनी ज्यादा हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होगी, वो आत्मिक स्थिति है यानी बाबा की याद है, और बाबा की याद है यानी ही आत्मा उतनी उतनी पावन होती जाएगी। तो हम अपने आप से पूछे, क्या घर जाने की तैयारी, यानी मैं आत्मा पावन बन चुकी हूँ? और तीसरा, रिटर्न का मतलब, टर्न का मतलब होता है परिवर्तन। हम अपने आप से पूछें कि घर जाने के लिए जो परिवर्तन, इस दुनिया की चीजों को छोड़ना छोड़ के, वैसे हमने परिवर्तन टर्न कर लिया है लाइफ को, कि पहले वाली लाइफ भी चल रही है, ये लाइफ भी साथ में चल रही है, पहले के भी कुछ संस्कार कुछ बातें साथ में हैं, कुछ अभी के भी रख लिए, वहां पे तो ये सारी चीजें नहीं चलेगी। तो अपने आप को पूछिए कि हमने परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि जब तक टर्न नहीं किया तो रिटर्न नहीं हो सकते। अपने आप को टर्न करना है, अपने जीवन को परिवर्तन करना है। क्या मेरे जीवन में वो परिवर्तन आ गए जो परमात्मा देखना चाह रहे हैं? बाबा ने आके तो अपना काम कर दिया। बाबा को पारसनाथ कहते हैं। पारस अगर किसी लोहे को छू दे तो वो सोने का बन जाता है। परमात्मा ने आके हम आत्माएं जो लोहे के जैसे बन गई थी, उनको छू के यानी ज्ञान देकर हमें सोने के जैसे बना दिया। लेकिन सोने की कीमत कहाँ होती है? सोने की चीजें क्या हम लेने जाते हैं सुनार के दुकान पे? सुंदर गहने? लेकिन हम तो बाबा के ज्ञान में आने के पहले कैसे बन गए थे? लोहे के तो थे, लेकिन कोई चाकू के जैसे था, कोई कैंची के जैसे था, कोई तलवार के जैसे था। सब समझदार हैं, सब समझ गए होंगे। हमारे बोल, हमारा नेचर काटने वाला, एक दूसरे को दुख देने वाला था। क्या उसको परिवर्तन कर लिया? बाबा ने ज्ञान देकर हमें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना दिया। दुनिया के नजर में तो हम श्रेष्ठ कहलाने लगे, ये लोग भगवान के बच्चे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। दुनिया हमको बहुत अच्छी नजर से देखती है। तो भगवान ने अपना काम तो कर दिया। पारसनाथ ने आकर हम जो लोहे के बन गए थे सोने का बना दिया। लेकिन सोने की दुकान पे क्या कोई सोने का चाकू कैंची या तलवार खरीदने जाता है? क्या खरीदने जाते? गहने। तो बाबा ने हमें सोने का बना दिया, दुनिया से अलग हमारी एक अच्छी पहचान हो गई। लेकिन अब बाबा क्या कह रहे? अपने आप को चेंज कर लो, परिवर्तन कर लो। सोने के तो बन गए, लेकिन सोने के सुंदर गहने बन जाओ। और सोने के सुंदर गहने बनना यानी परमात्मा की पावरफुल वाइब्रेशन लेकर अपने पुराने इस कड़े संस्कार जो काटने वाले, जो दूसरों को अलग करने वाले हैं, वो खत्म करते। यानी पवित्र किरणों के अंदर जैसे ज्वाला रूप स्टेज कहा जाता है, उसमें हमारे विकर्ण दग्ध हो जाते, तो वो पुराने संस्कार खत्म हो जाए, दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाए। वो दिव्य गुण देखकर और आत्माएं कहें कि आप कहाँ जाते हो, आपका देखना, आपका चलना, आपका बोलना कितना अच्छा है, हम भी बनना चाहते। यानी आप सुंदर गहने बन गए। सुंदर गहने बनने का ही मतलब कि हमारे में वो दिव्यता आ गई, वो अलौकिकता आ गई, वो रूहानियत आ गई, जो दुनिया से हम अलग नजर आए। तो अपने आप से पूछें, पुराने संस्कारों को चेंज कर दिया है? क्योंकि हम बाहर वालों को तो कोई गलत करता है तो माफ कर देते, छोड़ो वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं, इसके लिए उसने ऐसा किया। लेकिन अपने ही परिवार में किसी से कोई बात होती है तो 10 को बताएंगे, तुमको पता उसने ऐसा किया, तुमको पता है? अरे अगर आप अपने परिवार को भी साथ लेकर नहीं साथ चल सकते, आप दुनिया को साथ लेकर कैसे चलेंगे? हमको तो पूरी दुनिया को एक करना है, जोड़ना है। आप परिवार को नहीं जोड़ सक रहे तो दुनिया को कैसे जोड़ेंगे? यानी अपने परिवार में किसी से कम ज्यादा होती है, उसकी कमी को एडजस्ट कर रहे हैं। एक सुनार की दुकान, एक लोहार की दुकान बाजू बाजू में थी। एक दिन लोहार लोहा पीट रहा था, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा टूट के सुनार की दुकान पे गिर गया आके। सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत दिन से मैं सोच रहा था तुमसे बात करने की। लोहे के टुकड़े ने कहा, कहो क्या बात करना है? कहा बस एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करता है? पिटाई मेरी भी होती है, सुनार मेरे को भी पीटता है, सोने का टुकड़ा बोल रहा है, और लोहार तुमको पीटता है। पिटाई तुम्हारी भी होती है, मेरी भी होती है, लेकिन तुम इतना चीखते क्यों हो? तुम इतना चिल्लाते क्यों? क्योंकि लोहार जब लोहा पीटता है तो धाम 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 जोर से आवाज होती है ना। तो लोहा का टुकड़ा बोलता है, लोहे का टुकड़ा, कि भाई मेरे, मैं इसलिए चीखता हूँ, इसलिए चिल्लाता हूँ कि मुझे मारने वाला मेरा अपना है, तुम्हें मारने वाला तुम्हारा अपना नहीं। सुनार तुम्हारी पिटाई करता है, लेकिन तुम्हारी पिटाई सोने की हथौड़ी से नहीं, लोहे की हथौड़ी से करता है। लोहार क्या करता है, लोहे को गर्म आग में लाल करके लाल लोहे पे ठंडे हथौड़े से मारता है। लोहा लोहे को मार रहा, यानी जब अपना अपने को मारता है तो आह निकलती है, तुमको मारने वाला तुम्हारा अपना नहीं है, इसलिए तुम नहीं चीखते हो। कहने का मतलब, जब हम ज्ञानी हैं, परमात्मा का ज्ञान इतने सालों से सुन रहे हैं और हम अपने ही परिवार की किसी कमी कमजोरी को देख के और उसको कुछ बोलते हैं तो आह निकलती कि ये भगवान के बनके भी इनके बोल चेंज नहीं हुए, इनके कर्म चेंज नहीं हुए, इनकी भावनाएं चेंज नहीं हुई, तो आह निकलती है। और अब आह किसी के ना निकले, क्योंकि अब तो हमारा हिसाब किताब क्लियर करने का टाइम आया। घर जाएंगे किसी का हिसाब किताब बाकी रहेगा तो नहीं जा सकते। बाबा कहते रजिस्टर नया बनेगा जाएंगे तो अब रजिस्टर और बिगाड़ने की जरूरत है या रजिस्टर क्लीन करने की जरूरत है? तो हम अपने आप से पूछे, मेरे बोल में परिवर्तन आ गया है? क्योंकि ये हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। हम अपने गले में डिग्री लेकर नहीं घूमते कि मैं कितना पढ़ी लिखी हूँ, मैं किस परिवार से बिलोंग करती हूँ। नहीं, जिस घड़ी द मोमेंट यू ओपन योर माउथ पता चल जाता है आप कितने पढ़े लिखे हैं या आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। एक राजा शिकार करने गए, शिकार नहीं मिल रहा तो अंदर ही अंदर जंगल में चले गए। इतने अंदर चले गए जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, काफी जंगल में भटक गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को एक साइड भेजा, आप इधर जाओ। अपने मंत्रियों को कहा, आप इधर जाओ और मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति मिल जाए और जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता चल जाए, बिगुल बजा देना, सब इकट्ठे हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। अब जिस ओर सिपाही गए थे, कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा जंगल में एक कुटिया बनी हुई है, उसके बाहर एक व्यक्ति बैठे जिनकी आंखें नहीं है। तो सिपाही ने कहा, ए अंधे, इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकता है? उस व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सिर इस तरह से हिला दिया। सिपाही वहां से चले गए और काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद मंत्रियों को भी कोई नजर नहीं आया, वो भी वहां पहुंच गए। मंत्री ने देखा एक व्यक्ति घने जंगल में बैठा है, आंखें नहीं है। मंत्री ने कहा, सूरदास जी, क्या आप बता सकते हैं कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से निकलता है? दोबारा उस व्यक्ति ने इस तरह से सिर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। मंत्री भी चले गए और काफी देर पूरे जंगल को छानने के बाद राजा को भी वही आना पड़ा। राजा ने देखा इतने घने जंगल में कुटिया बनी है, एक व्यक्ति बैठा है, जरूर कोई ऋषि होगा, तपस्या कर रहा होगा। तो राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्या आप बता सकते हैं इस जंगल से बाहर जाने का मार्ग कहाँ से निकलता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मैं नहीं जानता इस जंगल से बाहर जाने का मार्ग कहाँ से निकलता है, लेकिन आपसे पहले आपके मंत्री और आपके सिपाही भी मुझसे ये बात पूछ के जा चुके हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, इनकी तो आंखें नहीं है, मुझे राजन कह रहे हैं आपके मंत्री और सिपाही आए थे। तो राजा ने पूछ लिया, ऋषिवर, आपके तो नेत्र नहीं है, आपने कैसे जाना मैं राजा हूँ, आपने कैसे जाना मेरे मंत्री और सिपाही आए थे? तब उस व्यक्ति ने कहा, राजन, किसी के व्यक्तित्व को जानने के लिए ये दो चर्म चक्षु की आवश्यकता नहीं होती है, इंसान के बोल ही उसके व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। जिन शब्दों से आपने मुझे पुकारा, हे ऋषिवर प्रणाम, इतना सम्मान कोई राजा ही किसी व्यक्ति को दे सकता है, इससे मैंने जान लिया कि आप राजा हैं। आपके मंत्री आपके साथ रहते हैं उन पे आपका थोड़ा असर था। उन्होंने कहा सूरदालशी जंगल से बाहर जाने का मार्ग बता सकते हैं। मैं जान गया कि ये मंत्री होंगे और सिपाही तो रफ्तपी होते हैं। उन्होंने कहा ए अंधे ये जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकता है। कहा महाराज सत्य तीनों थे लेकिन आपका सत्य सभ्यता और शिष्टाचार पूर्ण था। कहने का तात्पर्य जिसकी आंख नहीं है वो भी जान जाता है आपके बोल से कि आप किस व्यक्तित्व के धनी हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं? ईश्वरीय परिवार से। दुनिया का सबसे ऊंचा परिवार है ईश्वर के संग हम रहते हैं, वो ईश्वरीय परिवार के हम आत्माएं हैं। तो हमारे बोल कैसे होना चाहिए कि हम अगर बोलें तो लोग पूछें कि आपको कौन पढ़ाता है। इतने अच्छे गुण, इतने अच्छे बोल, इतने अच्छे आपके श्रेष्ठ कर्म आपने कहाँ से सीखे, कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से, हमें चांस मिल जाएगा बताने के लिए। हमको तो ईश्वर पढ़ाता है, हम तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। एक मौका मिले पूरा ज्ञान आप सुना सकते हैं। कहने का मतलब हम जिस परिवार के हैं, जो हमारा पिता है, उस परिवार के और उस पिता के गुण अगर हम में अब नहीं दिखेंगे तो कौन कहेगा कि हम ईश्वरीय संघ में रहते हैं। कहने का मतलब अब घर वापस जाना है तो जाने के पहले लोगों को ये तो पता चले मैं किसकी संतान हूँ। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देंगे। जिस किसी से मिले तो रूहानियत भरी दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से जो बाबा हमें देता है। बाबा की दृष्टि कभी देखी चेंज हुई? दादी को गले लगाता है तो भी बाबा मुस्कुरा रहा है, और आत्माओं को देख रहा है तो भी बाबा ऐसे ही कर रहा है। बाबा का चेहरा कभी चेंज होता है नहीं? क्यों? क्योंकि बाबा सभी को पवित्र आत्मा के रूप में देख रहा है। ये सभी वो महान आत्माएं बैठी हैं जो भविष्य में महाराजा और महारानी बनने वाले, इसके लिए बाबा यही कर रहा है। और हम, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। हमें भी बाबा वाली दृष्टि बनाना है, ये परिवर्तन करना है। तो अपने आप को पता पूछें क्या ये टर्न किया है। अगर ये टर्न किया है तो ही हम अपने घर जा सकेंगे। कहने का तात्पर्य ये, अब समय कम है, हम चारों तरफ की चीजें सिचुएशन हालात देख रहे हैं, अब घर जाना है। तो घर जाने के लिए अब जो समय है यही समय है। ऊपर जाके हमारे पास पुरुषार्थ के लिए समय नहीं होगा। अपने आप से पूछें वो तैयारी हो गई है? जैसे आप अभी अपने लौकिक घर में जा रहे होंगे, मधु बनाते हैं तो यहाँ से भी कुछ शॉपिंग करते हैं ना। यहाँ पे बहुत अच्छे व्हाइट शॉल मिलते हैं, व्हाइट स्वेटर मिलते हैं, या बाहर मार्केटिंग के लिए बहुत जाते हैं तो आपके वहाँ पे भी सब मिलता है, लेकिन यहाँ से कुछ लेके जाना है। हमें भी वो घर जाना है, वहाँ क्या लेकर जाएंगे? यहाँ से क्या चीजें जाएंगी वो पता है? वो चीजें खरीद ली हैं? वो चीजें साथ में रख ली हैं? किसी ने कहा कि सफर में होती है शिकायत मुसाफिर को, सफर में होती है शिकायत मुसाफिर को, इसलिए रेलवे में भी रिजर्वेशन होती है। पर कुछ तो करो उस लंबे सफर के लिए जहाँ ना कोई टिकट ना कोई रिजर्वेशन होती है, जहाँ ना कोई टिकट ना कोई रिजर्वेशन होती है। हम सबको उस लंबे सफर पे जाना है, यात्रा तो करनी है ना सबको। ये यहाँ की यात्रा के लिए तो ट्रेन की प्लेन की आपने बुकिंग कर ली, उस यात्रा के लिए कौन सी बुकिंग चाहिए? वहाँ कोई टिकट नहीं है, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पे आपकी स्थिति इस समय की जो श्रेष्ठ बनाई होगी, वो स्थिति आपकी यात्रा को, उस लंबे सफर को सुखद बनाएगी। यात्रा पे हम जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? किसी का दिल नहीं दुखाना। हमको भी लंबे सफर पे जाना है अपने घर, अभी याद कर लें ये भी यात्रा चल रही है हमारी। किसी को दुखाना नहीं है, किसी के दिल को नहीं दुखाना है। यात्रा में और क्या होता है? कई बार आप टिकट ले लेते हैं, कई बार कंफर्म टिकट मिल जाती है, कई बार वेटिंग होती, कई बार जाते जाते ट्रेन में वेटिंग टिकट जो होती वो कन्फर्म हो जाती, कई बार कन्फर्म नहीं होती। तो क्या करना पड़ता, चालू डब्बे में धक्के खाते जाना पड़ता है, क्योंकि सफर तो करना ही है, जाना तो है, यात्रा तो करनी है। तो अगर टिकट कंफर्म हो जाती है तो बड़े आराम से सोते हुए मजे से अपने घर पहुंच जाते, और अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो धक्के खाते जनरल कंपार्टमेंट में जाना पड़ता। ये जिंदगी की यात्रा भी ऐसी है, वो यात्रा में ये जीवन में अगर बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म कर लिए हैं, दुआएं इकट्ठी कर ली है, कंफर्म टिकट है, आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। और सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद भी चलता है ना कौन देख रहा है, चलता है ना कौन देख रहा है, टिकट कंफर्म नहीं होगी, चालू डब्बे में धक्के खाते जाना पड़ेगा, अच्छा लगेगा। तो अभी हमारे हाथ में है उस यात्रा को, जब घर पे जाना है उस यात्रा को अगर सुखद बनानी है तो हमने घर जाने की तैयारी कर ली है। क्योंकि जब दुनिया में हम आए तो हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी। घर में बच्चा पैदा होता है तो रोता है ना, बच्चा पैदा हुआ रोता है ना, वो रोता है और घर के लोग खुशी मनाते हैं। बेटा हुआ तो कुल का दीपक पैदा हुआ, बेटी हुई तो लक्ष्मी पैदा हुई, मिठाई बांटते हैं। यहाँ बच्चा रो रहा है और सब हंस रहे हैं, और अगर कोई बच्चा रोता नहीं तो उसको चिमटी लेंगे, मारेंगे, कहीं मरा हुआ तो नहीं पैदा हुआ, रो रो, नहीं रोता तो भी रुलाते हैं। तो जब दुनिया में हम आए तो हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, लेकिन जब हम दुनिया से जाए तो हम हंस रहे हो और दुनिया रोए, ये कब होगा, कब होगा? जब सारी जिंदगी मैंने, जब से ज्ञान मिला तब से हर आत्मा को सुख दिया होगा, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, तन से मन से धन से संबंध से संपर्क से जितना सफल कर सकती हूँ वो सफल किया होगा। मैं तो जाने की तैयारी कर रही हूँ, बाबा ने कांत में साक्षात्कार भी कराएगा, कौन क्या बनेगा, तो मेरी आत्मा निकलने वाली होगी। मैं साक्षात्कार कर रही हूँ, मैं यहाँ की देवी बन रही हूँ, महारानी बन रही हूँ, तो मैं मुस्करा रही होंगी, लेकिन और आत्मा कहेंगे अरे बहुत अच्छी आत्मा थी, इतनी जल्दी क्यों जा रही भगवान, ऐसी आत्माओं की तो यहाँ जरूरत थी, कितने प्रेम से बोलते थे, कितने प्यार से सुनाते थे, कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाओ तो कितना सुंदर बताते थे, ये करो तो ये हो जाएगा। तो ऐसी आत्माएं जब जाएंगी तो दुनिया रोएगी और हम हंसेंगे, लेकिन कब, जब जीवन भर हमने ज्ञान को जीवन में उतार के और आत्माओं को सुख दिया होगा, और आत्माओं को सही रास्ता बताया होगा, किसी का योग नहीं लग रहा तो पावरफुल वाइब्रेशन से उसकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया होगा। अपने आप से पूछो, हमने कितना ऐसा जमा किया है, इतना खाता जमा है कि जब हम दुनिया से जाएं तो हम हंस रहे हैं और दुनिया रो रही हो। अगर नहीं किया तो अब भी समय है, आज से अभी से, मुझे किसी का कुछ गलत नहीं देखना है, मुझे जितना ज्ञान मिला उस ज्ञान का सार ये है, जितना हम आत्माओं को सुख देंगे, प्रेम देंगे, सही मार्ग बताएंगे, वो मेरे खाते में जुड़ेगा और वो मेरी यात्रा को आसान करेगा। उस लंबी यात्रा पे कोई टिकट रिजर्वेशन नहीं, लेकिन मेरी स्थिति, मेरा पुण्य का खाता मेरी उस यात्रा को आसान करेगा। तो जब अब घर जाना है तब अपने आप से पूछ ले कि वो चीजें खरीद ली हैं, यहाँ जाने के लिए तो खरीद ली होगी, वहां जाने के लिए कौन कौन सी चीजें साथ जाएंगी, सिर्फ तीन चीजें, और उन तीन चीजों को बांध लीजिए, बाकी यही रह जाएगी। पहले है दिव्य गुण, दूसरा है दिव्य संस्कार, और तीसरा है दुआएं। उस घर में ले जाने के लिए तीन चीज छोड़कर आपको दुनिया की और कोई चीज साथ में आप नहीं ले जा सकेंगे, एक फूटी कौड़ी भी यहाँ से आपके नहीं जाएगी, करोड़ों अरबों खरबों पड़ा है यहीं पड़ा रह जाएगा। आपने जीवन भर में ऐसे दिव्य गुण धारण किए हैं जो देख के अभी लोग कहें, इनको देख के तो ये साक्षात देवी दिखती हैं, ये साक्षात देवता दिखते हैं, और वो धारणा होती जाएगी जितना जितना ज्ञान मेरे जीवन में धारण हो गया होगा, क्लियर मुझे हो गया कि जो मैं करूंगी वही मेरे सामने आएगा। तो दिव्य गुण और दिव्य संस्कार, वो दिव्य संस्कार जो 16 कला संपूर्ण देवी देवताओं के होते वो मेरे अंदर धारण हो गए। क्या मैंने दुआएं जमा कर ली? दुआएं कब मिलती है? दुआएं तब मिलती है जब बिना स्वार्थ के हम किसी का भला करते। स्वार्थ में तो दुनिया टिकी है, मैं ये कर रही मुझे क्या मिलेगा, उसमें दुआएं नहीं मिलेगी। बिना स्वार्थ के आपने किसी का भला कर दिया, किसी को सही रास्ता बता दिया, वो कहेंगे कितने अच्छे थे। और ये दुआएं हमारे इस जीवन में भी काम आती हैं, ऊपर भी काम आते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सीरियस हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मैंने दवा कर दी, अब दुआ करो, इसको कोई बचा सकता है तो दुआएं बचा सकते हैं। इस जीवन में भी हमारे दुआएं काम आती हैं, ऊपर जाते हैं तो भी वो दुआएं हमारे साथ जाती हैं और गवाही देती है परमात्मा के सामने, इस आत्मा ने कितनी कितनी दुआएं कमाई, कितने लोगों के भला किए, और उसके आधार पर हमारा भविष्य जन्म होता है। बस ये तीन चीज छोड़ के हमारे साथ और कुछ नहीं जाने वाला। अपने आप से पूछे ये कितना जोड़ा है, दुआएं जोड़ी है? अगर अभी मेरी आंख बंद हो जाए तो अपने आप से पूछे कितने लोग मुझे याद करेंगे, कितने लोग मिस करेंगे कि नहीं ऐसे लोगों की जरूरत थी। और ये कब होगा? जब ये याद रहेगा कि अब घर जाना है, जब घर जाना ही है, सब कुछ यहीं रह जाना है, मेरे साथ कुछ नहीं जाना है, मेरे साथ सिर्फ ये तीन चीजें जानी हैं, तो इन तीन चीजों को मैं जोड़ना शुरू कर दूं। क्योंकि आज हम बाबा का ज्ञान सुन के समझ के भी कहीं ना कहीं वो जो अंतिम पेपर आने वाला है घर जाने के पहले, उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुए। सभी को पता है अंतिम पेपर, सभी को पता है दो क्वेश्चन आएंगे, दो ही पेपर के दो ही क्वेश्चन, और दुनिया के पेपर में डेट फिक्स बता देते, ये डेट से एग्जाम्स हैं, पेपर क्या आएगा नहीं बताते। हमारा बाबा तो भोला भंडारी है, ये बता दिया कि पेपर में क्वेश्चन कौन से होंगे, पेपर आउट कर दिया, सिर्फ डेट नहीं बताई। बच्चे ये तैयार रखो कभी भी एग्जाम हो, और वो दो क्वेश्चन कौन से हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया है अपनों से तो ठीक है, अपने शरीर से सबसे ज्यादा मोह होता है, इससे मोह नष्ट हुआ है कि अभी तक ये तो नहीं हो रहा वो तो नहीं हो रहा। हम तंग हो जाते हैं, अपने शरीर से भी तंग हो जाते हैं क्योंकि मोह होता है ना, इससे भी तंग मत हो, इससे भी मोह मत रखो, दूसरे से भी मोह नहीं रखो। और जब तक ये मोह रहेगा तो मोह जहां है उसी की याद आएगी, बाबा की याद तो नहीं रहेगी। और स्मृति लब्धा का मतलब है कि हर वक्त बाबा की याद, मेरा बाबा मेरा बाबा। अभी बाबा ने क्या कहा, एग्जाम के समय हम बच्चों को फोर्स नहीं करते पढ़ो 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 नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं, एग्जाम के पहले एक दो महीने पहले तक करते रहते, जब एग्जाम आता तो क्या बोलते, वाह राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा तो बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि जो पढ़ाई करनी थी उसने कर ली, अब उसका उमंग उत्साह बढ़ाए। बाबा हमारा क्या कर रहा है, वाह बच्चे वाह, वाह मेरा बाबा वाह, पढ़ाई जो पढ़ानी थी सब पढ़ा दिया उसने, जो कुछ ज्ञान सुनाना था सब सुना दिया, अब एग्जाम का समय आ गया इनको टेंशन नहीं दूं, वाह वाह कर रहा है बाबा हमारे। कितनी मुरली में कितनी बार वाह वाह किया इस मुरली में बाबा ने, इसका मतलब क्या, पढ़ाई वो पढ़ा दिया, अब आपके ऊपर है आप पेपर के लिए रेडी हो गए या नहीं रेडी हो गए। जाने के पहले एग्जाम तो देना पड़ेगा, तब तो ऊपर जाएंगे। तो अपने आप से पूछे मोह नष्ट हो गया? हर वक्त बाबा 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 की याद रहती है। मैंने एक शमशान के बाहर लिखा पड़ा था, बहुत अच्छा लगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, हम सबकी मंजिल वही है, मरेंगे तो शमशान में ले जाके चलाएंगे, कि मंजिल तो तेरी यही है तमाम उम्र गुजार दी आते आते, मंजिल तो तेरी यही थी तमाम उम्र गुजार दी आते आते, दुनिया से तुझको क्या मिला, तेरे अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, तेरे अपनों ने ही जला दिया जाते। ये बहुत कड़वा सत्य है लेकिन सत्य है, हम सब जानते हैं इन आंखों से जो कुछ नजर आ रहा है सब कुछ खत्म होने वाला, ये मेरा वो मेरा वो मेरा, ठीक है मेरे हैं, प्यार करो स्नेह रखो आत्मीयता रखो, लेकिन मोह नहीं रखो। क्योंकि जैसे ही आत्मा निकली आंख बंद हुई मेरे अपने ही कहेंगे शाम तक मिट्टी ठिकाने लगा दो नहीं तो बास आएगी, यही कहते हैं ना। तो मैं तो सारा जिंदगी सोचते रही ये इतने मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे मेरे अपने ही ले जाके सबसे पहले जलाएंगे, तो मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा। अभी सिर्फ बाबा भी नहीं, मेरा बाबा, एक मेरी आत्मा और एक मेरा बाबा, ये सत्य है। बाकी जो कुछ इन आंखों से दिख रहा यही रह जाना है। इसका मतलब अब घर जाना है तो जिसको जाना है, जो साथ जाना है, वो मैंने साथ जोड़ लिया है, और जिसके पास जाना है उसकी याद निरंतर है, तो हम कहेंगे कि घर जाने की तैयारी हो गई। घर तो जाना ही है, आप नहीं भी कहेंगे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया। बाबा ने हम जब ऊपर से आए थे तभी रिटर्न टिकट दे दी थी, हरेक के पास रिटर्न टिकट है, हरेक की टिकट पे डेट टाइम नहीं डले, आएगी गाड़ी बस चलो बैठो और चलो। तो जब आए गाड़ी तब आए, बुलावा जब आए तब आए। मैं तो अपनी पैकिंग करके रख लू ना, हम पहले से पैकिंग कर लेते ना, तो घर जाने की पैकिंग कर ली। अभी पूछ लो जो तीन चीजें जाने वाली हैं, उन तीन चीजों को जोड़ लिया है, दिव्य गुण, दिव्य संस्कार और दुआएं। और एक बात याद रखें, इस लंबी यात्रा को जो हमको अपने घर जाना है उसके लिए सबसे सहज पुरुषार्थ, जिसमें बाबा जो कुछ भी बताता है वो सब आ जाता है, एक बात सिर्फ याद रखें, मेरे जीवन के सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। कोई ज्योतिषी के पास आप जाएं, जरा हाथ देख के बताइए, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसने कहा तुम्हारे जीवन के 24 घंटे बाकी है, आप क्या क्या करेंगे 24 घंटे में। कोई कह दे कि बस 24 घंटे के बाद ओम शांति, क्या क्या करना चाहेंगे मन में सोचो। ये एक बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसको अगर आपने पक्का कर लिया तो घर जाने का रास्ता बड़ी आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति ऐसे ही महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा अपना शिष्य तो नहीं बनाता लेकिन तेरा भविष्य बता देता हूँ। तेरी जिंदगी के 24 घंटे बाकी, उस समय रात के 9 बजे थे, कल 9 बजे रात को तेरी मौत हो जाएगी। जैसे उसने सुना कहा कल रात को मरना है तो फिर तुमको गुरु बनाने की भी क्या जरूरत है, भागते भागते घर आ गया। अब सोचने लगा कल मरना है क्या क्या करूं, फोन उठाया, डायरी उठाई, जितने भी दोस्त रिश्तेदार सबको फोन कर रहा है कल दोपहर को मेरे घर पे भोजन करने आना और मेरे घर का सारा सामान खुला होगा, आपको जो चाहिए वो लेके जाना, प्लीज हाँ आना, प्लीज हाँ आना। काफी फोन कर लिया, सामने से कुत्ता जाते दिखा, कुत्ते को पकड़ के उठा लाया, जबरदस्ती बिस्किट का पैकेट रखा था खोल के खा 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 ले, दिन भर से भूखा खा ले खा ले खा ले, जबरदस्ती कुत्ते को पूरा बिस्किट का पैकेट खिला दिया। फिर याद आया कुछ लोगों से अनबन हो गई थी, उनसे भी दुश्मनी क्यों, अब तो जाना ही है, उनको फोन किया, माफ करना आपसे मेरा थोड़ा तुतुमय हो गए थे लेकिन प्लीज कल दोपहर पे मेरे घर पे भोजन पे आना, अगर आपको कोई भी चीज पसंद हो तो लेके जाना फ्री में, हाँ प्लीज आना। बहुत लोगों को सबको फोन कर दिया, आधी रास्ते ज्यादा बीत गए, सामने से बिल्ली जाते देखी, बिल्ली को पकड़ के लेके आया, दूध का टोप उसके सामने रखे, कहता पी ले पी ले पी ले ना तेरे लिए रखा, रोज उठा के लकड़ी मारता था, आज उसको जबरदस्ती कह रहा पीले पीले ना पीले, जबरदस्ती बिल्ली को पूरा दूध पिला दिया। फिर याद आया कुछ नाम और दोस्तों के, उनको भी फोन कर दिया, सारी रात सभी दोस्तों को दुश्मनों को रिश्तेदार को फोन करते रहा, प्लीज कल दोपहर पे मेरे घर पे भोजन को आना। सुबह दिन निकला, नहाया धोया, पूजा पाठ की, सारे बैंक में जहां जहां पैसा जमा था सारी बुक्स रख ली, हर जगह जाके बैंक अकाउंट क्लोज कर डाला, सारे पैसे विड्रॉ किए, जो जो संस्था में जहां जहां उसकी आस्था थी सब जगह पैसे दान कर दिए, 5-स्टार होटल में खाने का ऑर्डर कर दिया। घर आया दोपहर हो गई थी, दोपहर हो गई थी लोगों का आना शुरू हो गया था, सब लोग हंस रहे, बहुत मजाक कर रहे, क्या बात है भाई करोड़ों की लॉटरी लग गई क्या, खाना भी खिला रहे, कह रहे जो चीज चाहिए लेके जाओ। कहा ऐसे ही समझ लो, लोग जोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, जिसने खा लिया, किसी को टीवी अच्छा लगा वो उठा के ले गया, किसी को लैपटॉप अच्छा लगा वो ले गया, किसी को बाइक अच्छी लगी वो प्लीज ले जाओ, हाँ प्लीज ले जाओ, खुशी से कह रहा है। कोई सूट ले जा रहा है, कोई टाई ले जा रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है। सब खा रहे पी रहे, शाम के 5 हो गए, घर पूरा खाली, सब खाना खा के चले गए। होटल वालों को कहा कि आपके बर्तन और पेमेंट ले जाओ, होटल वाले आए अपने बर्तन ले गए, उनका पेमेंट कर दिया, 6 बज गए, सब कुछ खाली। अब सोचने लगा 3 घंटे बाकी, 3 घंटे बाकी तो जो जिंदगी में कभी नहीं किया वो आज कर लेता हूँ। जिंदगी में क्या नहीं किया था, कभी भगवान को याद नहीं किया था, अब 3 घंटे तो बाकी है। अब ईश्वर को याद करता जीवन भर नहीं किया था, भगवान को याद करने लगा, हे ईश्वर अब तो आपके पास आना, मौत की बात सुनो ना, भगवान बहुत याद आता है, तो भगवान से बड़ा योग अच्छा लगा, हे ईश्वर अब तो आपके ही पास रहना है, आपके ही पास आना है, माफ करना किसी का दिल दुखाया हो तो, लेकिन कल से तो आज तक नहीं दिल दुखाया, सब कुछ सफल किया और बड़ा अच्छा योग लग गया। कितना परमात्मा से यो बात कर रहा है, प्रेम से योग लग गया, और कब आंख खुली तो देखा 9:30 बज गए। अरे महात्मा जी ने तो कहा था 9 बजे मरेंगे, 9:30 कैसे बज सकते, फिर अपने आप को रात मौत के डर से तेरे को घड़ी फास्ट भागते दिख रही, 9:30 नहीं 8:30 अपने आप को कह रहा, भगवान को याद कर, भगवान को याद कर, आधा घंटा और बाकी है, फिर भगवान को याद करना, हे ईश्वर अब तो आना है, आपके ही पास आना है, आपके गोद में कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। फिर आंख खोल के देखा घड़ी 10 बज गए, अब डाउट हो गया, एक दो जगह फोन करके पूछा, टाइम किया, वो कहा 10 बज गए, क्या 10 बज गए, भागते भागते गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आपने तो कहा था 9 बजे मर जाऊंगा, 10:30 बज गए, मैं नहीं मरा। गुरुजी ने कहा तू मरने वाला भी नहीं था, कहा मरने वाला नहीं था, फिर आपने क्यों कहा कि मैं 9 बजे मरने वाला हूँ, कहा बताता हूँ बैठ। महात्मा जी ने कहा बैठो बताता हूँ क्यों कहा था कि 24 घंटे के बाद तुम मरोगे, पहले ये बताओ कि तुम्हारे ये 24 घंटे कैसे बीते। वो कहता सच बताओ, कहा गुरु बनाना चाहते हो तो सच ही बताओ, कहा गुरु जी मेरे जिंदगी के ये 24 घंटे ही मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे, घंटे थे, बाकी के जीवन मेरी बेकार, सिर्फ ये 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे घंटे थे, जब मैंने जीवन का अर्थ जाना, जहाँ मैंने सुख महसूस किया, जहाँ मैंने आनंद महसूस किया, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये एक दिन ही मैं समझ पाया। उसने कहा अच्छा क्या किया, गुरुजी मैंने दोस्त को भी प्यार किया, मैंने दुश्मन को भी प्यार किया, मैंने कुत्ते को भी प्यार किया, मैंने बिल्ली को भी प्यार किया, मेरे पास जो कुछ था सब मैंने दान में दे डाला, सभी को बुलाया, घर का जो कुछ था सब कुछ दे डाला, सबको हंसाया, सबसे प्यार किया, जिंदगी में कभी ये नहीं किया था, सब कुछ सफल कर दिया, आज इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ, जिंदगी में कभी इतना स्नेह इतना हल्कापन नहीं महसूस हुआ, सबसे बड़ी बात जो जिंदगी में कभी नहीं किया था, 24 घंटे में 4 घंटे मैंने भगवान को याद किया है, पूरी जिंदगी में भी 4 घंटे नहीं किया था। तो अगर सही पूछे तो पूरी जिंदगी में मेरे सिर्फ ये 24 घंटे मेरे जिंदगी के सबसे बेहतर टाइम था। तब गुरुजी ने कहा अब बताऊं कि क्यों मैंने कहा था तुम्हारे 24 घंटे बाकी है, क्योंकि आते बरोबर तुमने कहा था मेरा भविष्य बता दो और मुझे अपना शिष्य बना लो, अगर मेरा शिष्य बनना है तो जो आज तुम्हारी मन की स्थिति है कि तुमने जीने का रहस्य जान लिया कि जिंदगी का मतलब जिंदगी का सुख देने में है, 24 घंटे में तुमने सब कुछ दिया ही है, कुछ नहीं रखा, अब तुम जीवन के अर्थ को समझ गए, अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि इस मार्ग पे देने में जो सुख है वो लेने में सुख नहीं है, दुनिया में यही बात तो बाबा हमें बता रहे, जो दोगे वही तो कई गुना मिलेगा। गोल गुंबज में आवाज करो, हमारी आवाज इको होके हमारे पास वापस आती, दुनिया भी तो गोल है, हम जो दे रहे वही तो हमारे सामने आ रहा है। जो है देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कई गुना आते जाएगा आते जाएगा। तो हमारी जिंदगी के भी आज से हम ये सोच के चले, मेरी जिंदगी के भी सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, तो क्या करेंगे? किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, जोड़ नहीं, मोह नहीं, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। सबसे ज्यादा ईश्वर को याद करेंगे, अब तो तेरे ही पास आना है। और हमको तो क्लियर ईश्वर ने ही बता दिया, भगवान ने बाबा ने ही बता दिया कि अब घर जाना है। भले आप 100 साल और जिए, कोई मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर दिन ये सोच के चले आज के बाद मेरी जिंदगी के 24 घंटे बाकी है, और ये 24 घंटे का एक एक सेकंड मुझे हर आत्मा से प्यार करना है। जो कुछ मेरे पास है, तन से, मन से, धन से, संबंध से, संपत्ति से, वो सफल करना है, कई गुना आपके पास वापस लौट के आएगी। और जब इस तरह से हर दिन जीवन जिएंगे तो बहुत जल्दी हम बिल्कुल जैसा बाबा चाहते हैं वैसे हमारी घर जाने की तैयारी हो जाएगी। कहने का मतलब रिटर्न जर्नी हमारी कंफर्म तो है वो, लेकिन रिटर्न जर्नी मेरी सुखपूर्वक हो, हम बाबा के घर आराम से अपने घर जा सके, वो आत्माओं को जो कुछ हम दे सकते हैं, सुख से, शांति से, ज्ञान से, पवित्रता से, शक्ति से, प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बनाए, आत्माओं को पावन बनाए, और जो बाबा का ज्ञान किसी को दे सकते हैं दे के सफल करें, यानी हमारी रिटर्न जर्नी भी अच्छी होगी। जीवन को टर्न कर लिया यानी 24 घंटे सोच के हर दिन जिएंगे, लोभ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रहेगा। 24 घंटे के लिए क्यों करना है, अब तो जाना ही है। और रिटर्न बाबा के प्यार का, जब हर चीज आप सफल कर रहे हैं तो सही में हम बाप समानी, हमारी भावना हो जाएगी हमको सब कोई को देना ही है, जो है अच्छा देना है देते जाओ। तो तीनों रिटर्न अगर सही हो गए, जीवन को टर्न कर लिया, बाबा के प्यार का रिटर्न दे दिया, और रिटर्न जर्नी जाने की तैयारी, आत्मा को पावन बना दिया और आत्माओं को जो कुछ दे सकते वो दे दिया, तो अब घर जाने की तैयारी समझ लो हमारी पक्की हो गई। नहीं भी हुई हो तो अभी से करना शुरू कर दे, अब समय थोड़ा है, अब घर जाना है। हर पल दिल में ये गीत बजते रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो घर जाना है तो कैसे जाना, यहाँ का कुछ भी नहीं लेके जाना है, 3 चीजें ले जाना है, और वो ये 3 चीजें जो बताए इनको साथ में लेकर चलेंगे तो हमारी जर्नी आसान हो जाएगी। ये था अब घर जाना है, तो हर पल दिल में यही गीत बजता है। ओम शांति।
प्रभु याद आपकी आती है, हमें मूल वतन ले जाती है, देह की दुनिया भुला कर, देह की दुनिया भुला कर, हमें विदेह बनाती है। प्रभु याद आपकी आती है, हमें मूल वतन ले जाती है, देखना चारा वतन का हम परम शांति को पाते हैं, परस पर फिर पेने ही हम उड़ वतन को जाते हैं, देखना चारा वतन का हम परम शांति को पाते हैं, फर्श पर फिर पेने ही हम उड़ वतन को जाते हैं, शांति की किरणें मन में, शांति की किरणें मन में, शांति सवेरा लाती है, प्रभु याद आपकी आती है, हमें मूल वतन ले जाती है, खोए रहते ही सदा परमानंद के सागर में, हीरे मोती ज्ञान की भर कर बोल ज्ञान के भर कर बुद्धि के गागर में शक्तियों की चमक से सीप का मोती बनती है प्रभु याद आपके आती है हमें मूल वतन ले जाती है दिल में बहते प्रेम के झरने आत्मा उसको पीती है बाबा ही संसार मेरा इस आस से जीती है दिल में बहते प्रेम के झरने आत्मा उसको पीती है बाबा ही संसार मेरा इस आस से जीती है दिव्य गुणों की खुशबू से दिव्य गुणों की खुशबू से मन को सुगंध बनाती है प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है देह की दुनिया भुला कर देह की दुनिया भुला कर हमें भी देही बनाती है प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है ओम शांति प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है देह की दुनिया भुलाकर देह की दुनिया भुलाकर हमें विदेही बनाती है प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है देखना चारा वतन का हम परम शांति को पाते हैं परस पर फिर पेने ही हम उड़ वतन को जाते हैं देखना चारा वतन का हम परम शांति को पाते हैं फर्श पर फिर पेने ही हम उड़ वतन को जाते हैं शांति की किरणें मन में शांति की किरणें मन में शांति सवेरा लाती है प्रभु याद आपकी आती है हमें मूल वतन ले जाती है खोए रहते ही सदा परमानंद के सागर में हीरे मोती ज्ञान की भर कर बुद्धि के गागर में खोए रहते ही सदा परमानंद के सागर में हीरे मोती ज्ञान की भर कर बोध के कागर में शक्तियों की चमकते सीप का मोती बनती है प्रभु याद आपके आते है हमें मूल वतन ले जाते हैं दिल में बहते प्रेम के झरने आत्मा उसको पीती है बाबा ही संसार मेरा इस आस से जीती है दिल में बहते प्रेम के झरने आत्मा उसको पीती है बाबा ही संसार मेरा इस आस से जीती है दिव्य गुणों की खुशबू से दिव्य गुणों की खुशबू से मन को सुगंध बनाते हैं प्रभु याद आपके आते हैं हमें मूल वतन ले जाते हैं प्रभु याद आपके आते हैं हमें मूल वतन ले जाते हैं देह की दुनिया भुला कर देह की दुनिया भुला कर हमें विदेही बनाते हैं प्रभु याद आपके आते हैं हमें मूल वतन ले जाते हैं प्रभु याद आपके आते हैं हमें मूल वतन ले जाते हैं प्रभु याद आपके आते हैं हमें मूल वतन ले जाते हैं ओम शांति